नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने बिहार के रोहतास जिले में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच आज स्नातक हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पारी में आयोजित करने के निर्देश दिए। अमेरिका ने कहा, इसराइल और गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अधिक है और कभी नहीं रुकेगी। श्री मोदी ने कहा है कि हमारे सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता को ध्वस्त कर दिया है और नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से तेजी से निर्णायक रूप से निपटा जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने आज सवेरे बिहार के रोहतास जिले के दुर्गाडीह गांव में 48,520 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के 4 लेन के पटना, गया और धोबी खंड का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा है कि यह परियोजना 5,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोपालगंज कस्बे में 249 करोड़ रुपए मूल्य की 4 लेन के एलिवेटेड राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के पूंछ नगर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस सीमावर्ती नगर में हुई गोलाबारी में संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया। श्री शाह ने कहा है कि हर आतंकी हमले का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा।
जब पाकिस्तान ने निहत्थ नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा।
गृहमंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से डाक बंगले में मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। गृहमंत्री ने पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। श्री शाह ने कल रात जम्मू में राजभवन में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृहमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत के एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल सऊदी अरब में अपना 3 दिवसीय राजनयिक मिशन संपन्न किया। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सीमापार हमले के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अधिक रुख पर जोर दिया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बारे में व्यापक रूप से विश्व को अवगत कराने के मिशन के रूप में सऊदी के विचारों और भारतीय प्रवासियों के साथ व्यापक बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज परमवीर चक्र के सम्मानित कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया को याद किया जा रहा है। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने आज सुबह क्षेत्रपाल ग्राउंड में 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की। इसमें देश के सैन्य इतिहास में एक इतिहास उपलब्धि के तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों में 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच को शामिल किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल रिटायर्ड वी के सिंह ने अपने संबोधन में इस आयोजन को राष्ट्र के लिए बेहद गर्व का अवसर बताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया है कि आगामी 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को एक ही बार में आयोजित किए जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक ही पाली में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT अगले महीने मुंबई में खुल जाएगा और कुछ वर्षों में ही ये संस्थान पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। आज नई दिल्ली में श्री जाजू ने कहा है कि संस्थान युवा रचनाकारों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द और यूट्यूबर्स ब्रॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त प्रमाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जबकि संघर्षग्रस्त क्षेत्र में उसके सैन्य अभ्यास अभी जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में हल्की से लेकर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 3 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे और कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कल तक लू चलने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लोहित और चांगलांग जिले के लिए रेड अलर्ट, ईस्ट कमिंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, लोअर सियांग, लपारादा, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज अलर्ट और तवांग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, कमले, शियोमी और सियांग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने, बहुत तेज बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने देश के विकास के लिए विनिर्माण, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का आह्वान किया है। आज CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन एक व्यापक निकाय होगा जिसके पास दिशा देने, नियंत्रण करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति होगी कि कार्य कैसे किया जाए। श्री सुब्रमण्यम ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने देश के युवाओं से लाभ उठाने के तरीके खोजने का आग्रह किया। श्री सुब्रमण्यम ने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सिक्किम में मंगन जिले में चुंगथांग में लापता लोगों की तलाशी के लिए अभियान जारी किया है। जिलाधिकारियों ने बताया है कि 10 यात्रियों को ले जा रहे वाहन कल रात चुंगथांग और मुंशीथांग के बीच तिस्ता नदी में गिर गया था। 2 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए गैंगटॉक भेजा गया है। बाकी यात्रियों की तलाश के काम में सेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस पर और स्थानीय पुलिस की सेवा ली जा रही है। ऑपरेशन शील्ड के तहत कल पंजाब में मॉक ड्रिल किया जाएगा। होमगार्ड के विशेष महानिदेशक संजीव कारला ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह मॉक ड्रिल किसी भी हमले से बचने के अभ्यास के तौर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर किया जा रहा है। इससे पहले पंजाब ने प्रशासनिक कारणों से यह ड्रिल करने से इनकार कर दिया था और इसे 3 जून को रखा गया है। IPL क्रिकेट में आज एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम 1 जून को दूसरे क्वालिफायर में पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।